आरवी ने कोई रिस्पॉन्स न दिया तो पास ही बैठी सुजाता जी ने उसे हिलाया। आरवी उनकी ओर देख बोली, जी चाची। सुजाता जी, चाची नहीं चाचा जी, बुला रहे हैं तुमको। आरवी ने संकट जी की ओर देखा तो वो फिर बोले, ध्यान कहाँ है बेटा। आरवी मुस्कुराते हुए बोली, कहीं नहीं चाचू। संकट जी मुस्कुराते हुए बोले, सब्र रखो आरवी बेटा, सिर्फ सुबह तक की तो बात है। जानते हैं तुम्हारा बड़ा मन है अभी अपने बप्पा को स्वर्ण मंदिर में बिठाने का, पर दादी माँ ने कहा है ना बेटा, सुबह ही बप्पा के साथ बाकी सब भगवान जी को मंदिर में विराजमान कर अच्छे से पूजा करने को, सुबह का मुहूर्त शुभ और अच्छा होता है ना। आरवी कुछ कहती कि सुजाता जी बोल पड़ी, इसे सब्र कहा। आरवी उनकी ओर देख बोली, ऐसा नहीं है चाची, बहुत सब्र है, सुबह तक की ही तो बात है, हम कर लेंगे इंतजार। कल सुबह ही आप सबके साथ हम सारे भगवान जी को विराजमान करेंगे और पूजा भी करेंगे, सुबह सारा सामान भी आ जाएगा, ताज़ा फूल धूप बत्ती प्रसाद सब कुछ। इतना कह आरवी हाथ में बंधी घड़ी की ओर देख बोली, बस ये सुबह जल्दी हो जाए। ये सुन सब हंस पड़े। आरवी भी सबके साथ हंसती, तभी उसकी नज़र अयांश पड़ गई जो उसे देख मुस्कुरा रहा था। आरवी हम आते हैं कह ऊपर अयांश के पास चली आई। उसके आते ही अयांश ने उसे फट से पास के पिलर से लगा लिया और खुद उसके दोनों साइड हाथ रख उसके करीब उस पर झुक कर खड़ा हो गया। आरवी उसकी ओर देख बोली, शर्म नहीं आती, आपके ससुराल वाले नीचे बैठे हैं और आप ऐसी हरकत कर रहे हैं। कौन सी हरकत? अच्छा कैसी हरकत? यही जो आप कर रहे हैं, इतने करीब क्यों खड़े हैं आप हमारे? किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? सोचेंगे दामाद जी कितने बेशर्म हैं, कोई शर्म लिहाज ही नहीं है। आरवी बोल ही रही थी कि अयांश ने उसकी गाल पर किस कर दिया। वो बोलते बोलते रुक गई। वो फिर कुछ कहती कि अयांश बोल पड़ा, सोचने दो, कह दूंगा हाँ हूँ मैं बेशरम, और सिर्फ आपकी बेटी के साथ ही। वैसे इसे बेशरम नहीं रोमांटिक कहते हैं, कह अयांश ने आरवी की दूसरी गाल भी चूम ली। आरवी मुस्कुरा दी और उसकी आंखें छुप गईं। इतना ही नहीं वो ब्लश भी करने लगी। ये देखकर अयांश मुस्कुराते हुए बोला, सारा शर्माना तो तुम कर लेती हो, मैं शर्म करूं भी तो कैसे करूं? आरवी कुछ नहीं बोली, उसने अपना सिर अयांश के सीने में छुपा लिया। इस वक्त आरवी की धड़कनें बेतहाशा बढ़ी हुई थीं, जिन्हें सुन अयांश का भी दिल धड़क उठा। वो पिलर से हाथ हटाकर आरवी को कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। हाँ तुम बदलने लगे, हाँ हम बदलने लगे, हाँ सब बदलने लगा तेरे मेरे दरमियाँ, हाँ दरमियाँ चलो आज कहते हैं हम, तेरे प्यार में है गुम, लफ्जों का उसको नाम दें जो अक्सर खामोशियों में कहते हैं हम। हाँ तुम बदलने लगे, हाँ हम बदलने लगे, हाँ सब बदलने लगा तेरे मेरे दरमियाँ, हाँ दरमियाँ रास्ते थे जिनके कभी अलग, वो एक राह चलने लगे हैं संग, हम मिले दिल खिले सफर में एक दूजे को चुनते हैं हम। हाँ तुम बदलने लगे, हाँ हम बदलने लगे, हाँ सब बदलने लगा तेरे मेरे दरमियाँ, हाँ दरमियाँ। दोनों एक दूजे की बाहों की पनाह में गिरफ्त थे कि तभी दिनकर जी की आवाज़ आई, आरवी बेटा। आवाज़ सुनते ही आरवी ने अयांश को खुद से दूर किया और पिलर से निकल रेलिंग के पास होकर नीचे देखते हुए बोली, जी दादू आपका फ़ोन बज रहा है बेटा। दिनकर जी टेबल पर रखे फ़ोन की ओर इशारा कर बोले, ये सुन आ रहे हैं दादू, कहे आरवी जाने लगी कि अयांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरवी ने गर्दन घुमाकर अयांश की ओर देखा जो कि पिलर से सटकर खड़ा था। आरवी मुस्कुराते हुए बोली, हमें जाना है, चली जाना, पहले बताओ अब तो उस रूम से इस रूम में शिफ्ट हो जाओगी ना। अयांश ने दोनों रूम की ओर इशारा करते हुए कहा तो आरवी ने भी दोनों रूम की ओर देखा और फिर से अयांश को। उसे अपनी तरफ देखता पाकर वो नामे सिर हिला देती है। ये देख अयांश कुछ नहीं बोला, उसने अयांश का हाथ भी छोड़ दिया। मैं वेट करूंगा तुम्हारे जवाब का और तुम्हारा भी, जब तुम खुद हमारे रूम में आकर कहोगी, मिस्टर मेहरा ये रूम अब मिसेज मेहरा का भी है, मैं अब यहीं रहूंगी। इतना कह अयांश अपने रूम में चला गया। आरवी उसे जाते देख मुस्कुरा दी। तभी संकट चाचू ने आवाज दे दी, आरवी बेटा फोन संभालो अपना। आए कहते आरवी नीचे भागी चली आई। उसने टेबल से फोन उठाया बट तब तक फोन कट चुका था, फोन डॉक्टर कपिल का था। आरवी ने फट से बैक कॉल किया, एक बार नहीं दो तीन बार, बट कॉल ना लगा। आरवी को परेशान होते देख संकट जी बोले, क्या हुआ आरवी बेटा? आरवी फिर से फोन ट्राई करते उनकी ओर देख बोली, कपिल अंकल का कॉल था चाचू, अब लग ही नहीं रहा, अभी तो कॉल आया था उनका, अब पहुंच से बाहर बता रहा है। सुजाता जी हंसते हुए बोली, कपिल भाई साहब पहुंच में रहते कब हैं? संकट जी, काम होते हैं सुजाता कपिल भाई साहब को। सुजाता जी, डॉक्टर ही तो हैं और इतना व्यस्त कि ना एक जगह ठहरते हैं ना ही सांस लेने की फुर्सत है उनको। मैं तो सोचती हूँ आरवी डॉक्टर बन गई तो इसका क्या हाल होगा। संकट जी, आरवी अलग तरह की डॉक्टर होगी सुजाता, वो अलग डॉक्टर हैं और वो समाज सेवा करते हैं, देश क्या विदेशों में भी जाकर, एक ही जगह पर ठहरने से तो होने से रही। सुजाता जी, कुछ भी कहो कभी कभी तो लगता है जैसे वो भाग रहे हैं, मानो वो कोई चोर हो और सात मुल्कों की पुलिस उनके पीछे पड़ी हो, जो वो हर मुल्क से फरार ही रहते हैं, ज्यादा टाइम एक जगह पर ठहरते ही नहीं, अगर ठहरे तो पकड़े जाएंगे। तभी शांति जी बोल पड़ी, क्या बोल रही हो सुजाता? ऐसा कुछ नहीं है, कपिल अच्छा काम करता है, अच्छा इंसान है, कुछ गलत नहीं किया उसने जो से भागना पड़े, किसी के बारे में ऐसे गलत नहीं कहती। बोल, उन्होंने आरवी की ओर देखा जो अभी
अभी भी वहीं इधर उधर चलते डॉक्टर कपिल को फोन लगा रही थी। उसे देख शांति जी ने दिनकर जी की ओर देखा, जो आरवी की ओर देख परेशान हो रहे थे। शांति जी आरवी से बोली, बेटा लगा फोन? आरवी, नहीं दादी, और लगता है अब नहीं लगने वाला। जैसे ही दिनकर जी ने ये सुना, उन्होंने राहत की सांस ले ली कि शांति जी फिर बोल पड़ी, लग जाएगा बेटा, फिर फोन आ जाएगा। हो सकता है वो भी कर रहा हो, नेटवर्क ना हो तो ना लग रहा हो। ये सुन दिनकर जी के चेहरे के हाव भाव फिर बदल गए। आरवी ने हाँ में सिर हिला दिया। वो टेबल के पास आकर अपना फोन रखने को हुई कि उसके फोन में टेक्स्ट मैसेज का नोटिफिकेशन आया था। मैसेज डॉक्टर कपिल का ही था। आरवी ने मैसेज बॉक्स खोल मैसेज पढ़ा। जैसे ही उसने मैसेज पढ़ा, वो अपने फोन को नो कहते सोफे पर फेंक देती है। सब उसकी ओर बड़ी हैरानी से देखने लगे। आरवी अपनी कमर पर दोनों हाथ रख थोड़ा गुस्सा होते हुए बोली, दादी माँ, कपिल अंकल का मैसेज आया है। वो बोल रहे हैं, आरवी बेटा तुम्हें कॉल किया बट तुमने पिक नहीं किया। अब कॉल लग नहीं लग रहा है। मैं जिस जगह हूँ वहाँ नेटवर्क बड़ा खराब है और मौसम भी, तो शायद ही कॉल पर बात हो पाए। सो कॉल नहीं लगे तो ज्यादा परेशान मत होना। मैसेज कर रहा हूँ जो तुम तक पहुँच ही जाएगा। और हाँ बेटा सॉरी, मैं अभी की सगाई में नहीं आ पाऊंगा, बहुत अर्जेंट काम आ गया है। इमरजेंसी है, एक वीक के लिए आज ही दूसरी जगह जा रहा हूँ। रियली सॉरी, वापस आकर तुमसे बात करूंगा। जहाँ जा रहा हूँ वहाँ फोन नहीं ले जा सकते हैं। अपने अंकल को माफ कर देना, नाराज मत होना, अभी को भी समझा देना, ओके? उसे भी मेरा सॉरी कहना और वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी और वर्तिका को मेरी तरफ से विश भी कर देना। मैं चल आऊंगा और सबसे मिलूंगा। ख्याल रखना बेटा, मिस यू, खुश रहो।
बोल आरवी चिढ़ते हुए धम से सोफे पर बैठ गई। उन्होंने फिर मना कर दिया, नहीं आ रहे वो, उनको फिर काम आ जाएगा, वो भी बहुत अर्जेंट एंड इमरजेंसी वाला। कितना मन था उनसे मिलने का, सबसे मिल लेते अभी, वर्तिका खुश होते उनकी सगाई में आते तो। बट उन्होंने प्लान ही कैंसिल कर दिया। 5 दिन पहले तो हाँ कह रहे थे, अब ना कर गए। मैं ना उनसे बात ही नहीं करूंगी, वो आकर बात करेंगे तब भी नहीं करूंगी, मिलने आएंगे तब भी नहीं मिलूंगी। नाराज मत होना, क्यों ना हो, ऐसा कौन करता है भला। समझते हैं हम जरूरी काम होते हैं, बट यहाँ आना भी जरूरी था ना। आने दो, मैं ना उनकी तरफ देखूंगी भी नहीं। सुजाता जी, ये तुम्हारी झूठी नाराजगी, रह भी सकती हो क्या उनसे बात किए बिना? फोन भी आया तो उछल के बातें करने लग जाओगी। आरवी, इसी बात का तो फायदा उठाते हैं, पर इस बार हम नाराज होकर दिखाएंगे चाची उनको, वो भी याद रखेंगे मेरा नाराज होना। शांति जी ने दिनकर जी की ओर देखा। उनके चेहरे से परेशानियों के बादल अब हट चुके थे, मानो बादल बरसकर मौसम साफ हो चुका हो। शांति जी आरवी को समझाते हुए बोली, आरवी बेटा ऐसा नहीं कहते, होगा काम जरूरी, नहीं होता तो जरूर आता, मना थोड़ी करता। समझो बेटा, कोई बात नहीं, बाद में आ जाएगा, सगाई हो रही है, शादी में शामिल हो जाएगा कपिल। फिर कोई काम का बहाना बनाकर मना कर गए तो? क्रमशः